किसी का एक सवाल है कि मेरा भाई, और बहुत सारे हम ये देखते हैं मसला आ गया कि सिर्फ लॉजिक को मानता है, वो कुरान भी पढ़ चुका है मगर मुल्हिद हो गया है, उसकी इस्लाह कैसे की जाए?
नहीं देखिए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सिर्फ लॉजिक को मानता है, यानी दुनिया के अंदर हर इंसान को अल्लाह ने यह सलाहियत दी होती है कि वो किसी चीज़ को अकली तौर पर समझेगा तो मानेगा।
बिल्कुल,
इसका मतलब यह है कि उसको न कुरान अकली तरीके से समझाया गया है, न दीन अकली तरीके से उसके सामने पेश किया गया है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपनी नई नस्लों को जिस जगह वो खड़े हैं, जहां से वो समझना चाहते हैं, जो उनके सवालात हैं, उनको सामने रख कर उनके सामने दीन पेश नहीं किया। तो ये एक अलमनाक सूरत हाल है। मेरा एहसास ये है कि ये बजाय इसके कि उसको कोई तानो तशनी करें, उससे कहे कि वो किसी अच्छे स्कॉलर से मिले, अपना नुकता नजर पेश करे। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उसकी जुबान में, उसके लहजे में, उसके पस मंजर को सामने रख कर उसको बता सकेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। कुरान मजीद भी मुझे मालूम नहीं कि उसने किस तरह पढ़ा है। हो सकता है कि नाजरा, जिसको कुरान मजीद पढ़ना कहते हैं, बगैर सोचे समझे पढ़ा दिया गया हो। हमारे यहाँ कुरान मजीद के तर्जमे भी बहुत अच्छे नहीं हैं, यानी आम तौर पर उनमें लफ्जी तर्जमे का तरीका इख्तियार किया गया है, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट आदमी के ऊपर वाजे नहीं होता। बड़ी मुश्किल पेश आ जाती हैं, क्योंकि कुरान मजीद एक अदब पारा है, वो आम नसर की किताब नहीं है। आप अल्लामा इकबाल का या गालिब का तर्जमा किसी दूसरी जुबान में करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मुश्किल चीज़ है। यानी एक अच्छी शायरी, एक अच्छा अदब पारा बड़ी आसानी से मुंतकिल नहीं किया जा सकता किसी दूसरी जुबान में। तो ये कुछ मुश्किलात हैं, तो उनसे कहिए कि वो अपने आप को आमादा करें इसके लिए कि जिस तरह वो मंतकी तौर पर या अकली तौर पर चीज़ों को समझते हैं, तो ऐसा नहीं कि दुनिया बाकी खाली हो गई है इनसे। अकली और मंतकी तरीके से बात समझाने वाले और बहुत से लोग होंगे, उनसे उनको जरूर मिलना चाहिए। और अपने बारे में, मैं हूं, आप हूं, कभी इस ख्याल में उबतरा नहीं होना चाहिए कि हमने आखिरी चीज जान ली है और सारा इल्म हम पर खत्म हो गया है, सारी मंतिक हम पर खत्म हो गई है। नहीं, मंतिक लॉजिक दुनिया में बहुत मौजूद है, तो उसके लिए उनसे कहिए अगर अपने मुताले को वसी करें, दूसरे अहले इलम से मिलें, अपनी बात दूसरों के सामने रखें, और अगर हम भी कोई खिदमत कर सकते हैं तो हाजिर हैं।
बड़ी अच्छी बात है, मेरी आ जाए।
अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि वो लॉजिक को मानते हैं तो कुरान तो इटसेल्फ बड़ा लॉजिकल है, इसकी क्या वजह है कि कुरान इतना लॉजिकल है उसके बावजूद वो किसी और लॉजिक को तलाश कर रहे हैं?
इसीलिए मैंने गुजारिश की कि गालिबन उनको कुरान मजीद का अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं कराया गया। यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि उन्होंने कोई गलती कर दी है, हमें भी तो ये महसूस करना चाहिए ना कि हमने कुरान को कैसे इंट्रोड्यूस कराया, अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाया है। क्या कुरान मजीद वाकई लॉजिकल तरीके से पेश किया गया है? क्या अकली और मंतकी तरीके से उसके नुक्ता नजर को वाजे किया गया है? जो उसके अकली मुकदमात हैं, प्रेमिसज हैं, क्या वो वाकई बच्चे को समझाए गए हैं? अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हो सकता है कि उसने कुरान मजीद को खोला हो और उसे ये महसूस हुआ हो कि ये उस तरह की किताब नहीं है जिस तरह की किताबें मैं आमतौर पर पढ़ता हूं। कुरान मजीद का इंट्रोडक्शन भी तो कराना चाहिए, किताब कैसी है, किस नौयत की है, ये एक अदबी किताब है यानी एक अदब पारा है, या ये कोई आम नसर की किताब है, कोई स्पार्ट किताब है, रियाजी की किताब है, साइंस की किताब है, ये पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो बाज़ औकात गलती हमारी होती है, लेकिन हम ये ख्याल करते हैं हमारा बच्चा गलत समत में जा रहा है, हमें भी तो उसकी तरबियत इस तरह करनी चाहिए। खुद वो सवाल करता है बचपन में तो हम कहते हैं सवाल क्यों किया, पूछा क्यों है, मजहब के बारे में सवाल किया करते हैं, सवाल करोगे तो ईमान से खाली हो जाओगे। तो जब हम इस तरह की गुफ्तगू करके अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि ये मंतिक, अक्ल, सवाल ये शायद इस मजहब में जायज ही नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि जब उनका दिमाग और उनका दिल मुतमिन नहीं होता तो फिर वो मुल्हिद अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं या और इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा, एक आम राय ये पाई जाती है कि रिलीजन के बारे में कहा जाता है कि ओपियम ऑफ द मैसेस है, और ये मुल्हिद या दहरी है, हजरात इसको यूज करते हैं, इसको काउंटर कैसे किया जाए?
देखिए, बात यह है कि
दीन के नाम पे नफरत फैलाई जाए,
इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि हर वो चीज जो इंसान की नफसियात और उसके जज्बात के अंदर उतरी हुई है उसको कोई भी शख्स एक्सप्लॉइट कर सकता है। माँ को देखिए कितना मुकद्दस रिश्ता है, माँ की ममता। हम सब लोग इस लफ्ज को सुनते हैं तो सरशार हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औकात माँ इसी ममता को इस्तेहसाल का जरिया बना देती है। बारह ऐसा होता है, मैंने कई माओं को देखा है, कई बापों को देखा है। यानी बाप कितनी शफकत से अपने बच्चों पर खर्च कर रहा होता है, माँ किस तरीके से उसकी परवरिश कर रही होती है, लेकिन बच्चा बाद औकात बड़ा होकर जब उसकी बात नहीं मानता या अपनी कोई राय देता है, अपना नुकता नजर बयान करता है, तो आम तौर पर फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू होती है। यानी उस मौके पर यह नहीं होता कि दलील देनी है, نہیں ہم نے تمہیں پالا تھا, ہم نے تمہیں پوسا تھا, ہم نے تمہاری پرورش کی تھی, آج تو ہمارے سامنے بات کر رہے ہو, آج تمہیں باتیں کرنی آ گئی ہیں, یہ باتیں ہم نے تمہیں سکھائی تھی. تو یہ ہر وہ چیز جو انسان کے جذبات سے متعلق, مذہب کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی یہ صرف ایک منطقی اور عقلی مقدمہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ ہماری نفسیات سے متعلق ہوتا ہے. اس میں کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, انبیاء علیہ السلام سے ہمارا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ جو جذباتی تعلق ہے اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جب اس کو مذہبی طبقے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, سیاستدان کرتے ہیں, تو پھر کچھ مفکرین یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں عوام کو دی ہوئی ایک افیون ہے. تاہم یہ بات جب کارل مارکس نے کہی تھی تو اس کا ایک خاص پس منظر تھا. اس کا احساس یہ تھا کہ غریبوں کو اور مزدوروں کو جدوجہد کرنی ہے اپنے حقوق کے لیے. تو مذہبی لوگ بالعموم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اس پر شاکر رہ کر تمہیں رہنا چاہیے, تمہیں اگر اللہ نے مزدور پیدا کیا ہے تو بس مزدوری رہو گے. تو اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے جذبہ, جدوجہد, انقلاب کی خواہش یہ چھین لیے لوگوں سے, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. تاہم کوئی دوسرا آدمی آپ کے رویوں سے, میرے رویوں سے ایک تاثر قائم کر لیتا ہے. آخر اس وقت ہم مسلمان اسلام کی جو تصویر پیش کر رہے ہیں اس سے اگر کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے یہ تو دہشت گردوں کا مذہب ہے یا انتہا پسندوں کا مذہب ہے, تو ہمیں بہت گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بہت بڑی اکثریت نہ انتہا پسند ہے نہ دہشت گرد ہے, لیکن کچھ لوگ جب نام بگاڑنے پر آ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک بڑا ہی شریف خاندان ہوتا ہے, کوئی ایک بچہ ایسا اس کو بدنام کر دیتا ہے کہ پورے خاندان کے لیے منہ چھپانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. تو یہی صورتحال بعض اوقات مذہب کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. ماننے والے 1.5 ارب سے زیادہ ہیں, کس کس کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے. تو ہم لوگوں کو یہی کہیں گے کہ وہ مذہب کو اس کی اصل جگہ پر دیکھنے کی کوشش کریں, لوگوں سے اس کو نہ دیکھیں.